यकीनन मैं जानता हूं और मेरी भी उम्र तकरीर करने में गुजरी है और इत्तेफाक रहा है इसी तकरीर के जिम्न में कि दुनिया में जहां कहीं भी उर्दू बोलने वाले बसे हैं तकरीबन हर जगह जाने का मौका मिला है। मैं जानता हूं तकरीर करने के एतबार से भी कि सुनने वालों की एक बिसात होती है कि कितनी देर सुन सकते हैं या एक रूह होता है कि किस तरह का कलाम वो सुन सकते हैं। मेरी उम्र तकरीर करने की 45 साल है। खुद अपनी उम्र नहीं बता रहा हूं, तकरीर करने की उम्र बता रहा हूं 45 साल है। और मैं लफ्जों की भी तकरीर कर सकता हूं, चीख भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं, लेकिन उम्र के साथ साथ मैंने महसूस किया है कि खाली खुश कर लेना कमाल नहीं है। किसी को खाली खुश कर लेना कमाल नहीं है, खुशियां वो यही छोड़ के चला जाता है। उसको कुछ ऐसा हुनर देना चाहिए कि वह आदमी बनना सीख जाए। लफ्जों का गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कामिल नहीं पैदा किया है, कामिल बनने के लिए पैदा किया है। शक्ल सूरत का नाम इंसान नहीं है, हकीकत में किरदार का नाम इंसान होता है। किरदार कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा? मैं थोड़ी देर, मैंने इब्तदान पूछा था कि मैं कितनी देर तकरीर करूं, इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद बहुत देर से आप हजरात सुन रहे हैं और उस वक्त मैं अपनी पूरी तकरीर करना शुरू कर दूं तो आदमी कहने लगता है कि मौलाना खाली तकरीर करने के लिए आए हैं, थकावट अगर महसूस ही नहीं कर रहे हैं। मेरा काम बोलना है, मैं सुनने वालों के मिजाज से वाकिफ हूँ। यहाँ कहीं घड़ी लगी नहीं है, मैं खुद घड़ी लगाए नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि सुनने वाले का हर एक का चेहरा खुद घड़ी होता है, वो पता चल जाता है कि थक गए हैं। और थके हुए लोगों को सुनाना अपनी बात को जाया करना होता है। जितनी देर तक आदमी सुन सके उतनी ही देर तक उसे सुनाना चाहिए। आज मैं बहुत करीब करीब से गुफ्तगू करूंगा, अजीजाने करामी और कीजिएगा, मैं अपनी उम्र के साथ साथ मरहले में पहुंचा हूं कि हर आदमी, मैं बात को मुकम्मल करने के लिए तफसीली गुफ्तगू कर रहा हूं, हर आदमी सुबह को जब तैयार होता है या किसी दूसरी जगह जाना चाहता है तो अपने को आईने में देखता है, तैयार हो लेता है तो आदमी अपने को आईने में देखता है। क्यों देखता है भाई अपने को आईने में? तैयार हो चुका है, मगर वह आदमी अपने को आईने में देखता है इसलिए कि जहां आंख है वहीं का पता नहीं है कि यहां कौन सा धब्बा लगा हुआ है। ये चेहरा, इसी चेहरे पे आंख, और हम आंख से सारी दुनिया देखें मगर अपना ही चेहरा नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आईने के सहारे की जरूरत होती है। खुदा न करे कि रास्ता चलने में कहीं कोई शख्स देख करके मुस्कुरा दे, आदमी ऑफिस तक या घर तक पहुंचने तक अपना चेहरा साफ करता जाएगा, पता नहीं क्या लगा था, इसलिए कि मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि कुछ ने देखा है। और जिसकी दुनिया पर मुस्कुराया है, आदमी जो चीज नहीं देख रहा होता है उसको ख्याल करके कहीं धब्बा धब्बा दाग कोई बदनुमा चीज तो नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह हंसा है, आदमी साफ करते जाता है, फिर भी यकीन नहीं हो पाता, पहुंच करके पहले ही महले में आईने के सामने खड़ा होता है। ये फितरत है इंसान की कि अगर पता भी चल जाए कि कोई दाग धब्बा है तो जब तक उसके साफ हो जाने का यकीन नहीं होता है वो यकीन करना चाहता है कि साफ हो गया। क्या किरदार के एतबार से दुनिया में इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी के पास जाना है, हमें किसी के पास जाना है, हम जिक्र रसूल करें उनके पास जाना है, हम जिक्र अहले बैत करें हम उनके पास जाना है, जिक्र परवरदिगार करें हमें उनके पास जाना है, किस लम्हे हम देखते हैं कि हमारे किरदार में कोई दाग धब्बा न रह जाए, उसे साफ करके जाएं, इसी साफ कर लेने का नाम होता है इंसानियत। अगर इंसान जो है इसी दुनिया में उसको साफ कर ले, उसे इंसानियत कहते हैं। मैं मुकद्दमे के तौर पर चंद बातें कह रहा हूँ। एक हदीस पढ़ूं, मैं कई बसों से यहाँ आ रहा हूँ, दो चार बातें मैंने कही हैं, मुझे याद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सुनने वाले आमतौर से भूल जाते हैं। एक तस्करा कर रहा हूँ। आईने के सिलसिले में हुक्म भी है, हुक्म भी है कि उन्दुर फिल मिरआ, आईना देखो, आईना देखो। अगर आईना देखने के बाद तुम्हारा चेहरा उसमें अच्छा लग जाए तो हुक्म है फकब्बिर थलासा, तो तीन मर्तबा तकबीर करो, तकबीर कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और उसके बाद का जो है ये जुमला, इसे याद रखिएगा और ये लेके जाइएगा। इस एतबार से कि मैं आज कुछ सुन के और सीख के आया हूं, और इस एतबार से मैं अपनी नस्ल को ये चीज बताता रहूंगा कि आईना देखो, अगर चेहरा अच्छा लग जाए तो तकबीर कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी बड़ा तो वही है, बड़ा वही है जिसको शान भी देता है तो अल्लाह ही देता है, खुद अपने से कोई हैसियत नहीं, वो बड़ा है। और उसके बाद ये दुआ, अल्लाहुम्मा हस्सन खुलकी कमा हस्सनता खलकी, परवरदिगारा जैसा तूने मेरा जाहिर अच्छा बनाया है उतना ही अच्छा मेरा बातिन भी बना दे। ये दुआ करे परवरदिगारा, जितना अच्छा तूने मेरा जाहिर बनाया है उतना ही अच्छा मेरा बातिन भी, मेरा अंदर भी उतना ही अच्छा बना दे। इसे कहा जाता है खल्क और खुल्क, खल्क जाहिरी शक्ल को कहा जाता है और खुल्क बातिनी शक्ल को कहा जाता है। और हमारे नबी करीम आए हैं बातिनी शक्ल को बनाने के लिए। कुरान उनके बारे में कहता है कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, उस बातिनी सूरत को बनाने के लिए। अंदर से आदमी अच्छा होता है, अरे जाहिर की सूरत तो मना मिट्टी के दरमियान दफन हो जाएगी, लेकिन अगर बातिन अच्छा हो जाता है तो जमाना याद रखता है, नस्लें याद रखती हैं, वो मर के भी जीता रहता है। हर आदमी जीना चाहता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी फितरत में जीना रखा है कि जीने की आरजू रखता है आदमी, तो यकीन कीजिए मरना भी, मरना नहीं होता है, मरना भी हयात बन जाती है किरदार साजी से। इंसान अपने को बेहतर बना ले तो जितना बेहतर बनाएगा उतनी ही देर तक जिंदा रहेगा। लोग उसके नाम के साथ याद रखते हैं, लोग उसके किरदार के साथ याद रखते हैं, लोग उनके बताए हुए उसूलों के साथ भी याद रखते हैं। आज हम नबी को याद करते हैं, यकीन कीजिए सरकार नबी करीम, मैंने जिस आयत का इंतखाब किया लकद मनबा अला मुमिनीन इबादतिही मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया है मोमिनीन पर, कब? जब अल्लाह ने उनके दरमियान में उन्हीं में से एक रसूल बना के भेजा। कभी सोचा आपने, गौर किया आपने, हमारी हयात का ताल्लुक किन किन चीजों से है? अगर हवा ना हो तो कितनी लम्हे जी सकते हैं भाई? लेकिन पूरा कुरान पढ़ लीजिए, कहीं परवरदिगार आलम ने नहीं किया है, कहा है कि हमने एहसान किया हवा पैदा करके, नहीं कहा उसने। पानी ना हो आदमी कब तक जी सकता है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कहीं भी एहसान का जिक्र नहीं किया कि मैंने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, लेकिन रसूल को भेजा है तो कहा मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, एहसान किया है। अगर देखा जाए तो हवा और पानी और गिजा से कितनी देर की जिंदगी, इस जमाने में 100 बरस से ज्यादा कहां जीता है आदमी भाई, कितनी जिंदगी। हवा और पानी से जिस पर हमारी हयात मौकूफ है, जिंदगी मौकूफ है, वो मिलने से आदमी बहुत जिएगा, 100 साल 125 साल, इससे ज्यादा तो नहीं जिएगा ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी करीम को भेजा है, अगर उनके बताए हुए उसूलों पर अमल किया जाए और उस तरह से आदमी जीने लगे जैसे वो चाहते हैं कि जिंदगी जी जाए, तो यकीन कीजिए आदमी मर के भी जिंदा रहेगा। यकीन कीजिए आदमी मर के तो जिंदा रहेगा और दुनिया हमारी तरफ देखेगी। मैं चंद बात कह रहा हूँ गुजारिश, और मैं इंशाल्लाह उतनी ही देर तक गुफ्तगू जब तक मैं देखूंगा कि आप सुन रहे हैं, और यकीन आपकी जिंदगी से बहुत करीब करीब से गुफ्तगू कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा बेइंतहा करीब से। इस्लाम के बारे में सरकार नबी करीम का फरमान है कि इस्लाम यअलू वला युअला अलैह, इस्लाम सबसे बुलंद है, उस पर किसी को बुलंदी हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन नबी करीम का इस्लाम बुलंद है, उस पर किसी को क्या मतलब बुलंद होने का, यानी अगर बुलंदी का नाम इल्म है तो मुसलमान को इल्म में इतना बुलंद होना चाहिए कि दूसरे मोहताज हों, अपने को पहचाने जाने। अगर तरक्की का नाम है, मतलब ये गुफ्तगू का मसला मैं इसका हूं तो इस पर एक घंटे बोल सकता हूं, इत्मीनान से बोल सकता हूं, तरक्की किसे कहते हैं? क्या झोपड़ी से निकल करके महल में आ जाने का नाम तरक्की है? साइकिल से हवाई जहाज पर जाने का नाम तरक्की है? ये सारे सुकून के असबाब हो सकते हैं, मगर आदमी की इर्तिका नहीं। आदमी ने इंसान को सुकून देने के वसायल फराहम किए हैं, आदमी की तरक्की नहीं है। आदमी की तरक्की अंदर से होती है, इंसान की तरक्की असल में अंदर से होती है। अब इस तरह से अंदर से तरक्की होती है, छोटी सी मिसाल देकर ताकि मैं इस मौजूद ज्यादा देर तक ना बोल सकूं कि एक बड़ा एक महल में रहने वाला इंसान जब बेसुकून होता है तो हो सकता है किसी अल्लाह वाले को तलाश करे और वहां जाए जो झोपड़ी में रह रहा है, वहां जाए जिसके बदन को हो सकता है फटे हुए कपड़े, और वहां जाए जिसका कोई महल नहीं है लेकिन वहां तक जाने के लिए वो पांव से जूते उतार के जाता है, सर को झुका के जाता है। रहने वाला महल वाला आदमी पता चला कि ये रूहानी एतबार से तरक्की याफ्ता है, यानी वो अपने मकान के एतबार से इंतहाई कमतर है, वो अपने लिबास के एतबार से इंतहाई कमतर है, मगर अपने अंदर के एतबार से इंतहाई बरतर है। जब इंतहाई बरतर और आला होता है तो आदमी किसी मंजिल पे होता है सुकून तलाश करने के लिए उसके पास जाता है। आप यकीन कीजिए हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलों में रहते थे, कोई खास किस्म का लिबास पहन रहे होते थे, अपने को लिबास से पहचानवाया, अपने को घर से पहचानवाया, अपने को जिस्म की साफ से पहचानवाया, किरदार से, किरदार से सदा अपने लफ्ज के लिए तो कहूं कि जिस जमाने में वो अखलाकियात जाने नहीं जाते थे, लफ्ज बोल दूं चाहे इस पर भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए, हमारे उर्दू अदब में अखलाको अदब बोला जाता है, एक माने में है नहीं, एक माने में अखलाको अदब या अदब अखलाक बोला जाए एक माने में नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अखलाकियात आफाकी होते हैं, आदाब जमानी और मकानी होते हैं। मैं वजाहत कर दूं और कीजिएगा, आदाब जो है किसी जमाने से मुताल्लिक हो सकते हैं, किसी जगह से मुताल्लिक हो सकते हैं, मगर अखलाकियात न किसी जमाने से मुताल्लिक है और न किसी जगह और मुल्क से मुताल्लिक है। अखलाकियात आफाकी जब से है और जब तक दुनिया रहेगी वो अखलाकियात में रहेगा। जैसे मसलन ये कहूं आदाब में मुमकिन है हमारे यहां हिंदू पार्क में कि भाई किसी बस में जा रहे हैं, किसी जनाजे में जा रहे हैं, किसी महफिल सिमा में जा रहे हैं, किसी मजार पे जा रहे हैं, किसी मस्जिद में जा रहे हैं तो सर ढक लो, मसलन आदाब में से है कि नंगे सर मसलन न जाए, आदाब में से है। लेकिन जिस मुल्क में आप रह रहे हैं मसलन वहां बिल्कुल इसको उल्टे कि अगर किसी बड़े के सामने जा रही है, कोई बड़ा आपके पास आ रहा है तो अगर आपके सर पे हैट है तो उसे उतारने की आदाब में से है, कहीं पहन लेना आदाब में होता है, कहीं उतार लेना आदाब में से है। तो आदाब जमानी भी होते हैं और मकानी भी होते हैं। इसलिए नबी करीम का ये भी फरमान है, अजीज मैं जब पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे मौजूदात आते हैं, जी चाहता है कि पहुंचाए। इसलिए मैं जानता हूँ कि हम मुसलमान नाम के हैं, नाम भी दो तरह के होते हैं, एक नाम रस्मी होता है और एक नाम तारीफी होता है। नाम रस्मी वो होता है कि मेरा नाम मारूफी है, आपका नाम मोहम्मद है, फलां का नाम फलां है, कि जब उसका नाम दिया जाएगा तो वही मुतवज्जे होगा। और तारीफी नाम वो होता है कि जैसा नाम है वैसा ही काम भी होना चाहिए। जैसे मेरा नाम अगर मारूफी है तो मारूफी रस्मी नाम है और दूसरा नाम है मुसलमान, तो जब तक कोई कहेगा कि ये मुसलमान है तब तक आदमी मान लेगा, लेकिन अगर मेरा काम उसके खिलाफ देखे तो आदमी कहेगा कि नहीं मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम उसी वक्त कहा जाएगा जब जैसा नाम है काम भी वैसा ही हो, तो वो नाम है। घर में पैदा हो जाने की वजह से नहीं होता है, काम की वजह से होता है। खाली याद रखने की का तो आदा जमानी है मकानी है, अखलाकियात जमानी और मकानी नहीं होते हैं। जैसे सच्चाई सच बोलना अखलाकियात में है, वो आदम से पहले भी सच्चाई अच्छी चीज थी और दुनिया नहीं रह जाएगी तब भी सच्चाई अच्छी चीज रहेगी, अच्छा माना जाएगा। किसी जगह भी जाके आप सच्चे रहे कि नहीं, लोगों में आप सच्चे रहे तो आप लायक तारीफ रहेंगे। अगर अपने ही आगे आदाब को दूसरी जगह आप करने लगे तो हो सकता बदतमीजी हो जाए, बड़ों में वहां जहां यहां है उतारे ना ले या पहन ले बदतमीजी मानी जाएगी, लेकिन अखलाकियात जो है वो कभी भी नहीं बदलते और कहीं भी नहीं बदलते। और हमारे नबी करीम खुल्क अजीम के मालिक हैं, खुल्क अजीम के मालिक हैं, इसलिए मानना चाहिए कि उस जमाने से लेकर के अब तक उसे पहले जगह के क़यामत तक के लिए ये कभी बदलने वाली चीज नहीं है। वो अखलाकियात जहां भी रह करके आप उस पर अमल करते रहेंगे, आपको लोग मुसलमान के उनवान से नहीं इंसान के उनवान से मानना शुरू कर देंगे। इसलिए नबी करीम दुनिया को इंसान बनाने के लिए आए थे। इसलिए मैं एक रुख है गुफ्तगु करने का और सोचने का भी, और कभी कहिएगा मैं लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं बुलाते हैं, कभी कहिएगा मैं पर भी गुफ्तगु कर सकता हूं कि भाई कि आखिर इस्लाम ने क्या तरक्की के उसूल बताए हैं। दुनिया ने तो ये बना दिया और वो बना दिया और ये बना दिया, मसलन सारी चीजें बना दी हैं। इस्लाम नबी ने क्या बना दिया, उनके बाद वाले औलाद क्या बना दिया मसलन। हमने तरक्की के उसूल को नहीं समझे, किसको तरक्की, एक इंसान की तरक्की होती है और एक इंसान के लिए होती है उसके जिस्म के लिए। ये भी मैंने कभी बात की थी, फिर याद दिलाना चाहूंगा, इंशाल्लाह आप मुतवज्जे हो गए, गौर कीजिएगा कि मसलन मैं कहता हूं मैं इस बात कही है, मैंने कही बात को दोहरा रहा हूं आदि दरमियान में, तो मैं कहूं मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। अगर पीरा पूरा वजूद मेरा बाल से लेकर के और पांव तक हर चीज देख रहे हैं तो सबको मैं नहीं कहता हूं, मेरा कहता हूं, ये बाल मेरे हैं मैं तो नहीं कहता मैं हूं, ये आंख मेरी है मैं तो नहीं कहता मैं हूं, जबान मेरी है मैं तो नहीं कहता हूं मैं हूं, हाथ मेरा है मैं नहीं कहता हूं मेरे हूं, दिल मेरा है नहीं कहता हूं मैं हूं, पांव जितनी चीजें आप वजूद में जानते हैं उसको देख रहे हैं ना देख रहे हैं सबको आप मेरा कहते हैं, मैं नहीं कहते मगर बोलते हैं मैं, तो मैं हूं कहां। कभी पाने की कोशिश की कि मैं हूं कहां, वो मैं कहां हूं जिसको मैं कह रहा हूं। अजीजों बस खाली एक तरफ गौर कीजिएगा इस पर, गौर कीजिए मैं अब, और यकीन कि जब तक इंसान खुद को नहीं पा सकता यकीन कीजिए कभी खुदा को नहीं पा सकता। इंसान जो है खुद को पा ले नहीं से खुदा को पाता है, बोलता मैं हूं और जानता बिल्कुल नहीं मैं कुछ, बिल्कुल नहीं जानता है, खोए हुए पाए हुए नहीं है वो, जब नहीं पाए हुए है तो कैसे कहेगा कि मैंने चीजों को पा ले। लफ्जों में आकर के इंसान खुद तो हो लेता बोल करके निस्बत से, लेकिन खुद वाकई अपने को वैसा पा भी रहा है नहीं पा रहा है। यकीन कीजिए इस्लाम हमारा मजहब जो है, यकीन कीजिए कि हमारा मजहब मनवाता नहीं है पहचानवाता है। अल्लाह ने अपनी जात को मनवाने के लिए हमको नहीं खल्क किया है कि मुझको मानो इसलिए मैंने तुमको पैदा किया है, بلکہ پہچنوانے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ خود کہتا ہے ارشاد اللہ کا، کن تو کنزم مخفیا واحببت ان اعرف فقدت حلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنے کو پہچنوانا چاہتا ہے. میں اس پر اگر گفتگو کرنے کے لیے پھر میں کہوں گا توحید، توحید ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے. اور جہاں کہیں بھی یہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے دل اور صدر میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں کو لگنے لگتا، یہ باتیں کیوں ہو، یہ کس لیے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں دھاگا الجھ جائے اور اس دھاگے کو آپ سلجھانا چاہیں تو اگر واقعی اس کو سلجھانا چاہیں گے تو دھاگے کا سرا تلاش کریں گے کہ اس کا سرا مل جائے تو اس کو سلجھانے میں دیر ضرور لگے گی مگر پورا دھاگا سلجھ ضرور جائے گا. اور جلدی کیجیے گا تو بیچ میں سے توڑ کر کے ادھر گرا لگایا، ادھر سے توڑا، ادھر گرا لگا دی، ادھر سے توڑا، ادھر گرا لگا دی، تو دھاگا سلجھ تو جائے گا مگر گرہیں کتنی لگی ہوں گی، گرہیں لگی ہوئی ہوں گی. گرہ لگنے کا مطلب رکاوٹ ہوتی ہے. مذہبیات میں بالکل ایسا ہی ہے. جب کبھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ لباس کیوں اور یہ چلنا کیوں اور یہ حکم کیوں اور فنا کیوں اور فنا ٹھیک نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ الجھے ہوئے ہیں، سرے کا پتا نہیں ہے. اسلام کے سمجھنے کے سرے کا نام ہے توحید. اور توحیدی کو آدمی جانتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، توحید بہت ہی فلسفی گفتگو ہے مگر ایک چھوٹی سی مثال میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا ہم کہتے ہیں توحید ہے اللہ کو ایک ماننا، تو ایک کیسا ایک؟ مثلا ہم لکھنؤ میں رہنے والے ہیں، برادر عزیز ہمارے محل میں ہیں، پوچھا تو بھائی کہ آپ کہاں گئے تھے، کیا کیسی میزبانی ہوئی آپ کی؟ کہنے صاحب لکھنؤ کے لیے میں چائے نہیں کہوں گا، پانی ہی کہوں گا. بھائی ایک پان سے، پان تو آپ جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، ایک پان میزبانی کیا تھی، ایک پان پیش کر دیا تھا آپ نے رکھ کر کے، ایک پان. جس ایک پان کو آپ نے ایک پان کہا، جس چائے کو آپ ایک چائے کہہ رہے ہیں، جب غور کیا وہ پان ایک نہیں ہے. پان کا پتا، اس پر چونا، اس پر کتھا، اس پر نگن، کتنی کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، کتنی چیزیں مل کر کے اسے آپ ایک کہہ رہے ہیں. آپ کبھی سوچ رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے غور کیا کہ جس اللہ کو ہم ایک کہتے ہیں وہ کیسا ایک ہے؟ وہ بھی کیا ایسا ہی ایک ہے جس میں علم ہے، جس میں قدرت ہے، جس میں ادراک ہے. جس اگر ایسا آپ نے اس کو ایک مانا کہ جس میں یہ تو بس لفظ خالی میں بول رہا ہوں کہ آپ نے اس کو نیپال بنا دیا. کوئی ایسا ایک نہیں جو بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہو. ہم نہ جانے کتنی چیزوں کو ایک کہتے ہیں مگر وہ ایک نہیں ہوتی ہے. نہ جانے کتنی چیزیں مل کر کے ایک ہوتی ہے. ایک مکان، نہ جانے کتنی چیزوں سے مل کے ایک مکان ہے. تو جس پر ہمارا وہ سرا ہی نہیں واضح ہوگا تو اس ایک ماننے کا کیا، سننے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے. کبھی آپ کسی کو بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نسل کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، یعنی میں جو کہوں گا کہ جوانوں کی طرف انگلی اٹھا دینا کہ آج کے جوان ایسے ہیں، آپ کی نسل ایسی ہے، آسان ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ایک فطری چیز رکھی ہے کہ انگلی اٹھتی ہے تو جس طرف اٹھتی ہے ادھر ایک انگلی ہوتی ہے، یہ تین مڑی ہوئی انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں. کیونکہ اسے ایک کو دیکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھو، کبھی تمہاری طرف سے ہے، کبھی تمہاری طرف سے ہے. اللہ نے اپنے شعور سے نوازا ہے. اس لیے ہم اگر ہم یاد مناتے ہیں سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانا چاہیے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ادبو اولادکم علی حب نبیکم، اپنے بچوں کی تربیت کرو حب نبی پہ. عظمت جی چاہے میں کہوں گا دو چار باتیں. محبت کا دعویٰ کرنا، آپ جانتے بھی ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں. محبت لگاؤ کو کہا جاتا ہے، مگر لگاؤ کی ابتدا کا نام کیا اور انتہا کا نام کیا ہے؟ محبت ایک لگاؤ کو کہا جاتا ہے، ایک رشتے کا نام ہوتا ہے، مگر اس کی ابتدا کیا اور انتہا کیا ہے؟ کم سے کم جہاں تک مجھے معلوم ہے اس محبت کے بھی درجات ہیں،
सात दर्जे तो मुझे मालूम है। उसकी पहली इब्तिदा का नाम है उन्स, जब उन्स आगे बढ़ता है तो दूसरे मरहले का नाम होता है उल्फत, और तीसरे मरहले का नाम होता है महब्बत, चौथे मरहले का नाम होता है मवद्दत, पांचवें मरहले का नाम होता है इश्क, छठे मरहले का नाम है शगफ, और सातवें मरहले का नाम है जुनून। क्या कभी आप इन लफ्जों के आईने में अपने को पाने की कोशिश करेंगे कि मैं कहां हूं, मैं उन्स के मरहले में हूं? मैं हर लफ्ज पर बोल सकता हूं। उन्स किसे कहा जाता है, उल्फत का मरहला क्या है, मोहब्बत का मरहला क्या है, मोहब्बत किसे कहा जाता है, इश्क किसे कहा जाता है। दुनिया में पढ़ने वाले, दुनिया हकीकी लफ्जों को दुनियावी मानों में तब्दील करने वाले न जाने कितने पस्त हो गए। मैं उन मानों को भी जानता हूं, मगर समझे और जाने कि हमारे इस लगाव कैसा है। मवद्दत के मरहले तक आने के लिए खाली इतनी बात कहूंगा कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जब मोहब्बत अमली शक्ल इख्तियार कर ले, यानी आपको कहने का मौका ना मिले, आप कहें ना कि मैं उन्हें चाहता हूं, आपका अमल बताने लगे कि आप उन्हें चाहते हैं, याद रखना उसे मवद्दत कहा जाता है। कि इंसान को कह के ना बताना पड़े, उसका बोलना बताए, उसका सुनना, रहना, चलना, फिरना बताने लगे किसके चाहने वाले हैं, किसके मानने वाले हैं, उसे मवद्दत कहा जाता है। अब मवद्दत के बाद इश्क, उस मरहले के नाम इश्क होता है तमस्सुक का नाम, इस तरीके से उससे मुतमस्सिक हो जाना, टिमट जाना। उसके लिए मिसाल भी मैं दे सकता हूं अजीजों, कि जैसे मसलन बहुत सारे दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, छोटी सी मिसाल, वरना हर एक मरहले बोलने की चीज है, आप थके नहीं, इसे जल्दी से कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। जैसे बहुत सारे पौधे जमीन पे ऐसे होते हैं जिनका तना मजबूत नहीं होता, वो खुद जो है बुलंदी की तरफ नहीं जा सकते जब तक उनको सहारा न मिले। आप आम का दरख्त लगा लीजिए, जितना ऊंचा होना हो खुद उसका तना मजबूत है, उतना ऊंचा हो जाएगा। खजूर का पेड़ है, उसका तना मजबूत होता है, जितना लंबा उसको होना उतना लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पौधे वो होते हैं जो खुद अगर सहारा ना मिले तो ऊपर नहीं जा सकते, वो जमीन पे फैल जाएंगे। जैसे मिसाल दूं मैं कि मसलन अंगूर, अंगूर की बेल, अगर उसको अगर यूं ही जमीन पर लगा दे तो जमीन पर फैल जाएगा। अगर उसको आप चाहते हैं कि इसका फल जो है खराब ना होने चाहे, तो आप उसको सहारा देंगे कि सहारे के जरिए से वो फैल जाए, जितना ऊंचा उसको सहारा मिल जाएगा उतना ऊंचा वो चला जाएगा। लेकिन अंगूर के हर पत्ती के साथ साथ एक और शाख सी निकलती है जो सहारे को से निपट जाती है, देखा ना आपने अंगूर में हर पत्ते हर दूसरे पत्ते के साथ साथ एक उससे रेशा निकलता है जो सहारे को पकड़ लेता है। और रेशा कितना मजबूत होता है, जब वो सहारे को पकड़ ले और आप चाहें उसे छोड़ा ले तो अंगूर का तना टूट जाएगा, या जिसको उसने सहारा बनाया वो टूट जाएगा, यानी वो ऐसे उससे चिपक जाता है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते, टूट के भी वो उससे लिपटा रहता है, या जिससे लिपटा है वो अपने से लिपटा है रहता है अपने तले। इसी चीज का नाम है जाने गिरामी, कि आप अपने वजूद के एतबार से इतने मजबूत नहीं हैं कि उस बुलंदी तक पहुंचे, लेकिन अगर मिल गया वो सहारा तो आप उससे इतने मुतमस्सिक हो जाएं कि दुनिया आपको खींचे भी तो वजूद का हिस्सा टूट जाए, मगर आप बदलने वाले ना हो, आप बदल न सके, वो आप उनसे ना, आप उनसे जुदा हो सके ना वो आपसे जुदा हो सके, कुछ ना कुछ रहे। इसको मैं जल्दी से अभी आप सुनने के मुझे लग तो रहा है, लेकिन मैं पूछ भी लेता हूँ कि आप सुनने के मूड में तो घर जा पाता हूँ क्या? सब आप मेहमान बार मांगता है, हालांकि एक बात है कि खाना भी इसके बाद है, भूख पर जो है किसी को काबू नहीं होता है। मेरी माँ बहने बच्चों को भी लेकर के आए हैं, बाद में कहने के मौलाना इतना लंबा कर देगा, हमारा बच्चा भूखे ही सो गया था, इंशाल्लाह नहीं होगा, जल्दी से जल्दी कहूँगा, गुजारिश करूँगा। कि यकीन कीजिए इंसान की अगर तवक्कात को, इंसान को अगर देखें, इंसान इंसान तीन मंजिला है, तीन मंजिला है, उसकी अला तरीन मंजिल का नाम है अक्ल, नीचे की मंजिल का नाम है रूह, और तीसरी मंजिल जो पस्त होती है पहली जिसको कहें वो जिस्म है। जिस्म, रूह और अक्ल, तीन मंजिला है इंसान। اور اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو تعلیمات بھی تین منزلہ ہیں جو ان تینوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان کا تعلق عقل سے ہے, عقائد اور ایمان کا تعلق عقل سے ہے. میں ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے ایمان نہ رکھوں, عقل کا سہارا بنا کر کے سمجھ لوں تاکہ کوئی دوسرا سمجھنا چاہے تو اسے سمجھا سکوں. اگر خالی آدمی گھر سے مانتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے, عقل سے مانتا ہے تو اکیلا بھی جماعت بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ عقل کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتی ہے. اور اخلاقیات کا تعلق انسان کی روح سے ہے, انسان کی روح سے. جتنی اچھائیاں ہیں جو زمانی اور مکانی نہیں ہیں, وہ انسان کی روح سے ہے. اور اعمال کا تعلق, یعنی دینی تعلیمات تین ہیں, عقائد و ایمان, اخلاقیات اور اعمال. اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے ہے, اخلاقیات کا تعلق انسان کی روح سے ہے, اور عقائد و ایمان کا تعلق انسان کی عقل سے ہے. اور اسی اعتبار سے اگر غور کیجیے گا, آپ تھوڑا سی علمی گفتگو ہو رہی ہے مگر میں لفظ آپ کے ذہن میں رہے گی تو سوچیں گے بچوں بتا سکتے ہیں. کسی نے کسی چیز کو پا لینے کے لیے تین مراحل ہوتے ہیں, احساس, ادراک, وجدان. احساس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود میں پانچ حس پیدا کی ہے. آدمی آنکھ سے دیکھ کے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے, کان سے سن کے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے, زبان سے چکھ کر کے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے, ہاتھ سے چھو کر کے یا جسم سے چھو کر کے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. جب احساس کسی چیز سے کرتا ہے تو احساس کے بعد کا مرحلہ ادراک ہے, اس کو سمجھنا. آپ نے سائے کو دیکھا, ہو سکتا ہے کہ ادراک یہ سایہ جس چیز کا ہے کوئی خطرناک جانور کا تو نہیں ہے. کسی آواز کو سنا, یقین کیجیے ہر میں بولتا ہوں تو اندر سے جی چاہتا ہے کہ ہر کی تفصیل بیان کروں لیکن تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اگر کان سے کوئی آواز سن رہے ہیں, آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ آواز آ رہی ہے, ادراک کا کام کہ یہ آواز میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. اگر اس کے بعد میں کہوں کہ موسیقی کا مرحلہ نکل سکتا ہے موضوع, آدمی کہتا ہے بھائی آنکھ دیکھنے کے لیے ہے تو دیکھنے سے منع کیوں کیا گیا, کان سننے کے لیے سننے کے کو منع کیا گیا, پاؤں چلنے کے لیے فلاں جگہ جانے سے کیوں روکا گیا, ہاتھ کچھ کرنے کے لیے فلاں کام کرنے سے کیوں روکا گیا. ارے آج کے زمانے میں کوئی سمجھنے کی چیز ہے؟ اگر بہترین ترقی یافتہ دور میں اگر اچھی چیز, مثلا ایک بچہ, ایک جوان لیپ ٹاپ لے کر کے آ رہا ہے, لیپ ٹاپ لے کر کے آیا اور اس کے لائن پر, اس میں جب کھولتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ رکا نکلا تو اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے, اس کو دھوپ میں نہ رکھیے گا, اس کو سردی میں نہ رکھیے گا, اس کو اتنی گرمی میں نہ رکھیے گا, یہ مثلا اس کے درجات سارے لکھے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بنانے والا اصول کو جانتا ہے, استعمال کرنے والا نہیں جانتا ہے. تو بنانے والے کا فریضہ ہوتا ہے کہ بتا دے کہ جس چیز کو تم لے کے آئے ہو کو کیسے استعمال کرو گے تو زیادہ مفید رہے گا. عزیزو یہ نہ اعتراض کرے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے روکا کیوں جا رہا ہے, کان سننے کے لیے روکا ہے, بلکہ شکر ادا کیجیے کہ جس نے کان آنکھ ناک کو بنایا ہے اس نے استعمال کا طریقہ بتا دیا, اس نے استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, زیادہ دنوں تک رہے, تو یقین کیجیے کہ انسان کو ان کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تو رہے گی بھی اور مفید بھی رہے گی. یہ اللہ کے احسان کے استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے. میں مسلمان کا توجہ چاہوں گا, یہ بولوں بات آتی ہے, غور کیجئے گا اگلی بات پر کہ حکم استاد میں سے کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں اس پر بھی بہت دیر تک بول سکتا ہوں اور جی چاہتا ہے بولنے کا, لیکن میں سمجھوں گا انشاءاللہ اتنی دیر تک بولا آپ توجہ سے سنیں گے. کسی ماں کی گود میں بچہ اس دنیا میں آیا, میں مثال دینے کی بات کہوں گا کہ دیکھیے انسان کی دنیا بھی کم سے کم تین دنیا کا جو تذکرہ ملتا ہے, ایک وہ دنیا ہے جو 9 مہینے کا بطن مادر میں, وہ بھی ایک دنیا مکمل اور اس میں ایک مدت ہے. اب ذرا کا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس دنیا میں جب بچہ ہوتا ہے, اگر وہاں سوال کیا جائے تو اس دنیا میں ہاتھ کاہے کے لیے بھائی, آنکھ کاہے کے لیے ہے, کان ناک زبان کاہے کے لیے ہے, وہاں پاؤں کاہے کے لیے ہے, تو اس دنیا میں جن میں سے کسی چیز کا کام نہیں ہے, نہ ہاتھ کا کوئی کام ہے, نہ کوئی چیز سونگنے کے لیے ہے, نہ کوئی چیز چکھنے کے لیے ہے, نہ کوئی میدان ہے چلنے کے لیے, پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. अगर कोई शख्स जैसे मैं कह रहा हूं सवाल उठा रहा हूं, आप जाके घर सोचिएगा और सोच करके अगर आपको इसका जवाब मिल जाए मुझे बताइएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा। काहे के लिए दुनिया में सारी चीजें हैं। अगर जितनी चीजें उस दुनिया में है, बतने मादर में जितनी चीजें हैं, अगर किसी चीज को पूछा जाए कि ये काहे के लिए है, तो अगर बच्चा बोल सकता है, बोल सके तो उसी को कहेगा ये सब मेरी चीज है, यही सब है मेरे लिए। वो क्या है? वो उसकी नाफ जो वजूद मादर से मिला होता है, ये नाफ जो पूरे माँ के वजूद से मिला हुआ है। कि अगर जो है वो कहीं उसमें कहीं तकलीफ हो जाए तो उसकी जिंदगी तकलीफ में आ जाएगी, बल्कि दोनों की जिंदगी तकलीफ में आ सकती है। हाथ पांव आंख नाक कान किसी का मकसद वहां के लिए नहीं समझ में आता जहां वो है, लेकिन वो नाफ उसका सारा मकसद समझ में आता है कि अगर इससे जुदा हो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो उस दुनिया से दूसरी दुनिया में आता तो ली क्या चीज आती है? वही चीज जो सब कुछ उसके लिए था उसी को पता कर दिया जाता है, वही नाफ। यानी वहां अगर सोचा जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया बदल गई तो जिसको सब कुछ कहा था आपने उसी को पता कर दिया और जिंदगी है। वहां सोचा भी नहीं जा सकता और यहां उसी चीज को ले लिया गया। ऐसे ही जब आदमी इस दुनिया में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद दूसरी दुनिया में जाने वाला, तो उसको भी कुरान पढ़ के देखिएगा तो मिलता है कि क्या आलम होगा। जब उस दुनिया से बदने मादर से बच्चा इस दुनिया में आ रहा होता है तो आने वाला रोता है, इंतजार करने वाले मुस्कुरा रहे होते हैं। और जब इस दुनिया से आदमी जा रहा होता है तो हमें तो नहीं मालूम जिस दुनिया में गया है वहां इंतजार करने वाले क्या करते हैं। कुरान ने बताया, जरूर पढ़िएगा तो बताया कि वहां का आलम क्या होता है। कुरान ने बताया है, उसको मैं पढ़ूंगा देर लग जाएगी, बताया है कुरान ने कि जब वहां जाते हैं तो वहां इंतजार करने वाले कैसे होते हैं। लेकिन बहरहाल यहां जो रह जाने वाले होते हैं वो रोते होते हैं। देख दो दुनिया की तब्दीली में कितना फर्क नजर आ रहा है कि वो जो बदने मादर से इस दुनिया में आ रहा होता तो वो रोता है, ना रोए तो हैरत होगी, और जितने इंतजार कर रहे हैं मुस्कुरा रहे होते। जब इस दुनिया से जाता है तो जितने यहां हैं वो रो रहे होते, जाने वाले का आलम क्या है कुरान ने बताया, मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैं जिस चीज को जिक्र करना चाहता हूं वो ये कि जब दुनिया बदने मादर से बच्चा इस दुनिया में आए तो अल्लाह का हुक्म है, करते वाजिब और फर्ज नहीं है, मुस्तहबात में से है कि उसके कान में अजान और दूसरे कान में अकामत कही जाए। आदमी सोचे, मेरी इतनी बात को सुन लीजिएगा, मैं बहुत कुछ सोच के आया था मगर नहीं, मैं एक बात कह करके मैं बात को खत्म करूंगा। यानी क्या है? अभी बच्चा पैदा हुआ उसको अजान और अकामत सुनाई जा रही, वो क्या समझेगा भाई? ये सुनाना भी कोई हुआ, अभी बच्चा पैदा हुआ है और वो भी अरबी जबान में पैदा हुआ है। स्विट्जरलैंड में पता नहीं आपकी कौन सी जबान है, जिन्हें मालूम पैदा हुआ इंग्लैंड में वो अंग्रेजी बोलेगा पढ़ करके, और सुना रहे हैं अरबी में। आप नहीं समझ में आता अहकाम खुदा है मैं। अरे मैं इसको खाली समझाने के लिए मैं तफसील छोड़ी हूँ देर लगे समझाने के लिए। इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए हुक्म खुदा पर, है हुक्म खुदा के अलावा अकामत कहनी चाहिए। जैसे आप आज का जवान अगर एक लैपटॉप खरीद के लेके आता है तो उसको फिक्र लग जाती है कि एक एंटीवायरस भी लेकर के आना चाहिए। अगर आप अपने लैपटॉप को जो है चाहते कि देर तक काम करे और काम करता रहे तो एंटीवायरस लेकर के आता है आदमी, और वो भी उसमें डालता है। वो जानता है कि अगर ये हम डाल देंगे तो इसकी हिफाजत रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिमाग के खाने बनाए हैं वो चाहता है कि इसको महफूज रखने के लिए पहले ये अजान और अकामत नहीं है, हकीकी मानों में एंटीवायरस है। यकीन जानिए मैं अजान के लफ्जों को दोहरा करके बता सकता हूं कि किस एतबार से और क्यों, तो इसका फायदा क्या है। यकीन कीजिए आज की दुनिया में साबित है कि लफ्जों के असरात होते हैं, आज की दुनिया में साबित है कि लफ्जों के असरात होते हैं। अगर आप पानी के भी खराब अल्फाज बोले तो उसके असरात साइंसी एतबार से मुरतब होते हैं। अभी कल मैं परसों देख रहा था वाकई एक बहुत दिन बरसे पाया था और बड़ी तहनीक के साथ कि खाली एक फल को काट करके दो हिस्सों में रखा है, और जिस हिस्से में रखा है एक पर अच्छे अल्फाज लिखे दूसरे पर बुरे अल्फाज लिखे गए, और उसको रख करके तीन दिन में जो है उसको निकाल कर दिखाया है, दिखा करके एक में पपूदे पड़ गए, दूसरा बिल्कुल वैसे ही होता था।
यकीन कीजिए।
अच्छा ये आवाज की बात होती है साइंस ही है, आप भी करके मसलन देख लें मिसाल के तौर पर, लफ्जों के असरात होते हैं मेरे दोस्तों मेरे अजीजों इस्लाम के मानने वालों। छोटी सी बात कहूंगा, चूंकि आज की तारीख में, आज की तारीख में दो विलादतें हैं, एक रसूल सादिक और एक इमाम सादिक ने, तो एक और खाली पढ़ूंगा। छठे इमाम हजरत इमाम सादिक ने फरमाया है कि आप अपने घरों में कुरान आवाज से पढ़ें, आवाज से पढ़ें, इसलिए कि हो सकता है उस घर में कुछ लोग और हों जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुरान की आवाज उसके कानों तक जाएंगे। अगर हमारी जबान से निकले हुए अल्फाज के असरात होते हैं तो अल्लाह के कलाम के क्यों नहीं असरात होंगे, क्यों नहीं होंगे। आमतौर से हम और आप लोग कुरान पढ़ते तो निगाहों से, मैं नहीं कहता निगाह से पढ़ना गुनाह है, वो भी सवाब है, आप निगाह से पढ़ ले रहे हैं, दिल में पढ़ ले रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि आवाज से पढ़ो, अगर आवाज से पढ़ो तो लफ्ज जिन जिन कानों तक जाएंगे उसके असरात मुरतब होते हैं। अपनी उर्दू में देख लीजिए साहब, अगर किसी साहिब इज्जत के लिए हम बुरे अल्फाज में दोहरा दें उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, मुंह में झाग आने लगे, हमने मारा नहीं था। लफ्जों के असरात हैं, लफ्जों के असरात होते हैं, इसलिए अगर मौका होता तो अजीज मैं कहता कई बार लफ्ज बोल चुका, कभी कभी बोल करके मुझे ना, मगर कह रहा हूं अजीज यकीन कीजिए, नबी करीम के सदके में आप देखें, घर में तरबियत के सलीके को सीखिए, बच्चों को लिए लफ्जे चुन करके और अच्छे और खुश करने वाली बोलना चाहिए। तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और बाद में शिकवा करना कि बच्चा मनाना कुछ कर नहीं पा रहा। इन लफ्जों के असरात मुरतब होते हैं, बल्कि लफ्ज बदल करके मैं कहना चाहूंगा कि यकीन कीजिए नबी करीम ने अपने नवासों के लिए कहा सैयदा शबाब हलिल जन्ना, खाली दो शख्सियतों की फजीलत नहीं है, ये बताया है कि अगर तुम अपने बच्चे को सरदार और आका बनाना चाहते हो तो बचपन ही से वो शऊर दो, तुम सैयद और सरदार हो, तुम आका हो, तुम हुक्मरानी करने वाले हो, तुम बड़े हो, जब आपने बचपन ही से उसको अहमक बना दिया है तो अहमक हो, बेवकूफ हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, फलाने को देखो, टिकाने के देखो। मैं कई वाकयात को ऐसे जानता हूं जिसे मदरसे में से निकाला गया, कुछ नहीं पढ़ सकता, मगर माँ सलीके मन थी, घर में आता है, बच्चे ने पूछा कि क्या लिखा है हमारे टीचर ने, उसने सलीका नहीं लिखा, अब तुम्हारी तारीफ की है, और इस कदर तारीफ की है कि वो कहते हैं कि भाई आपका बच्चा बड़ा जहीन है, हम इन्हें नहीं पढ़ा सकते, लिखा उल्टा था, लिखा उल्टा था, भाई इतना बेवकूफ इतना शरारती है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आपको संभालिए, लेकिन उसको संभालने के लिए कह नहीं, कहा बेटा तुम इतने जहीन पढ़ने वाले हो कि वो कहते हैं तुम्हारे लिए पढ़ा लिखा टीचर चाहिए, अच्छा चाहिए है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लफ्जों के असरात होते हैं, किरदार के असरात होते हैं, घरों में जरा पाल के तो देखिए, इस्लाम को मानना और अपने को मुसलमान कहलवाना सबको आता है, मगर अमल करके दिखाना, अमल करके दिखाना ये सबको नहीं आता, और शायद इसलिए नहीं आता है कि हमने इस्लाम अपने घर में जहाँ से पैदा हुआ उसे एतबार से जानते हैं, पढ़ के नहीं जानते हैं, हम उसे पढ़ के नहीं जानते हैं। खुश नसीब हैं लोग जो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, और उनके लिए सिर्फ एक ही इल्तिजा है, प्रोग्राम ज़रूर करें और अजीम से अजीम प्रोग्राम करें, लेकिन आप वक्त की ज़रूरत को महसूस करें कि साल में एक मरतबा करते हैं तो कुछ ऐसे बयानात होने चाहिए जिससे हमारा ज़मीर जागे, जिससे हम खुद अपने को पाने की कोशिश करें, जिससे हम अपनी मंजिल को पहुंच सकें, जिससे हम अपनी अजमत को पा सकें, वरना हम रस्मी तौर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जहां उन्हीं से मुतासर हो करके वैसे हो जाए। यकीन कीजिए कि अगर हम इस नाम पर अमल करते चले जाएं, मैंने ज़ात नबी करीम से मुतालिक कोई बात नहीं कही, न उनकी ज़ात से मुतालिक, मैं असल में जो कुछ कहने वाला भी था मैं बात ही को कहने वाला था, इसलिए कि आज के ज़माने में हम उनकी बातों ही को सुन करके उसको आईना बना करके अपने को देखें और अपने पाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन माशरा बन सकते हैं। और हर आदमी अपने घर में उनकी तालीमात से मुतअल्लिक अगर अपने घर ही में, अपने घर ही में उन चीज़ों को दोहराता रहे और उस पर अमल करता रहे, तो मैं, मेरे जहन में कई चीज़ें हैं कहने की अजीज़ों, लेकिन मैं आपने देख रहा हूँ कि देर हो रही है, मैं अपने अख्ताम खिलाते हुए कभी फिर मौका मिलेगा तो कहूँगा कि नहीं, आप अपने घर से, अपने घर से इंसान पाने की कोशिश करता है। सरकार नबी करीम के एक कौल को पढ़ बात ख़त्म कर रहा हूँ कि सरकार नबी करीम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझे दो बातों की ज़मानत दे दे तो मैं उसे तीन बातों की ज़मानत दूँगा। दो बातों की मुझे ज़मानत दे दे तो मैं तीन बातों की ज़मानत दूँगा। अल्लाह रसूल क्या दो बातें? कहा के बिर्रुल वालिदैन वसीलतुर रहम, अगर कोई शख्स मुझे ज़मानत दे दे कि मैं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता रहूँगा और अपने खून के रिश्ते को जोड़ करके रखूँगा, तो मैं उसे तीन बातों की ज़मानत देता हूँ कि कभी उसके यहाँ बेबरकती नहीं होगी, कभी उसके यहाँ बेबरकती नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कहीं भेजा नहीं है कि तुम्हें फलां जगह जाकर के ये करना होगा या रात के सन्नाटे में कमर पर पानी में खड़े होकर के आपको ये हज़ार मरतबे पढ़ना होगा। क्या कहा? बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक और खून के रिश्ते को जोड़ के रखो, कभी बेबरकती का सवाल नहीं पैदा होगा, कभी तुम बेबरकती के सवाल नहीं पैदा, और तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। और उम्र कैसी ऐसी नहीं कि आप चारपाई पड़े हुए, नहीं, बल्कि कान है तो कान काम करता रहा, जबान का गल से शांति के साथ में उम्र में इजाफा। और तीसरी चीज कहा कि उम्र में इजाफा और लोगों के दिलों में मोहब्बत, लोगों के दिलों में मोहब्बत यानी तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता रहेगा। माइक ने भी कहा कि बात ख़त्म कर दो, इसलिए कि हम आपकी बात को नहीं पहुँचाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत कराए। दुआ है कि समाज में कुछ लोग ऐसे ज़रूर पैदा होते रहें जो इन दिनों को याद करके उन दिनों की याद के उनवान से जश्न मनाएँ और तस्करा करें, और ऐसे बोलने वालों को बुलाएं जो दीन के हकायक को से आशना करते चले जाएं। और वगैरह हम सबको सच्चा अपना मुसलमान करार दें और अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।